स्वामी प्रभुपाद महाराज की नित्य लीला विविष्ट ओम इष्टमात परमं श्रेष्ठता श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव बिंदवान की नमाचार्य हरिदास ठाकुर की हरे कृष्ण महामंत्र की गंगामय यमुनामय की तुलसी महारानी की ग्रंथ भागवत भक्त भागवत की गौर गीता की गौर भक्त बिंदवान की हरिनाम संकीर्तन की गौर हरि प्रेमानंदे जय श्रीमद भागवतम की दामोदर मास की दामोदर व्रतों की उज्जा व्रत की उज्जा श्री राधा राधे की कार्तिक मास की नियम सभा मास की राधा दामोदर देव भगवान की गोकुल धाम की उतना बंदीला मामसा की गौ हरि प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृतम् नरञ्चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे नष्टप्राय सुभद्रेषु नित्यं भगवतो सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिरे भवती नैष्टकी श्रीमद् भागवतम दशम स्कंध अध्याय षटोध्याय श्लोक नंबर 33 कलेवरम परशोभि सीता तत्ते ब्रज ब्रजश्रक दूरे क्षिप्ता अवश्य अवश्य नदन काष्ट वेष्टित कलेवरम परशोभि कलेवरम परशोभि गीता तत्ते ब्रज कश गीता तत्ते ब्रज कश दूरे सिप्त वयस नदन काष्ठ बेष्टित नदन काष्ठ बेष्टित
वरम
परशोभिताे वजोकश कलेवरं परशुभि चित्तात्ते व्रजकश
कहीं हवा से संसर्ग से वह पुनः जीवित ना हो। सांप को मार देना ही काफी नहीं है, मारने के बाद इसे खंड खंड करके जला देना चाहिए, इससे खतरा ज्यादा रहेगा। पूतना एक विशाल सर्प की तरह थी, इसीलिए वालों ने इन्हीं सावधानियों को ध्यान में रखकर उसके शरीर को जलाकर क्षार कर दिया।
बंदेहं ओमगानतिमिलन्दशोगनञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं जनभूतले क्षयमरूपं कदामयं ददातीतपदाकीर्तं। बंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुनं वैष्णवांश श्रीरूपं सगरजातं सगणरघुनाथनितं तं साजिवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सगणनलिता श्रीविशिखानितं च। नमोऽयं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रदारिणे निर्विशेष शून्यवादी प्राच्युतदेशोतारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायति कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिषे नमो नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमो नमस्ते। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगद्धीताय गोविंदाय नमो नमो। तत्तो कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्ववानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नवविंदाय तुलसी दीपाय पियाय केशव सुधा विष्णु भक्ति पद देवी सत्यवती दे नमः नमः। वंचा कल्पद्रुवस्य कृपा सिंधु वैवच पदीतनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय श्री अद्वैत गदाधर शिवाश्रद श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्रीमद् भागवतम ग्रंथो महाराम श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज की दामोदर मा श्री दामोदर व्रत की पूज्येश्वरी राधा रानी की नियम सेवा मास की कार्तिक व्रत की। हरे कृष्ण। तो बहुत ही बहुत शुभ मास है, महीना है, दामोदर महीना है, कार्तिक महीना है। तो कार्तिक महीना में नियम रूप से भगवत श्रवण करना ये बहुत महत्वपूर्ण कहा जाता है। नियम रूप भगवत बनना, नियम रूप सेवा करना, ताकि राधा रानी स्वयं ये महीना में सेवा किया। ये महीना के नाम ही है नियम सेवा महीना। जो व्यक्ति जो सेवा करता है नियम रूप से ये महीना सेवा करना चाहिए। जो कुकिंग करेगा कुकिंग करे, मैंने इसको निष्ठा बोलता है, नियम सेवा होने निष्ठा पूर्वक ये महीना में सेवा करना चाहिए। राधा रानी स्वयं भगवान दामोदर के लिए ये महीना में बहुत सेवा किया, इसलिए ये महीना का एक नाम पड़ा उज्जेश्वरी, मान उज्ज्वल व्रत। उज्जेश्वरी को राधा रानी क्या नाम है, राधा रानी ये महीने में भगवान दामोदर को कृष्ण को बहुत सेवा किया, इसलिए एक नाम पड़ा उज्जव्रत उज्जेश्वरी राधा रानी का नाम है। और कार्तिक मास तो है नियम से मास, दामोदर भगवान के प्रिय मास हैं, चार महीने हैं, चतुर्मास बारह महीने हैं, बारह महीने भगवान का बारह नाम है, और ये महीने का नाम है स्पेशल नाम है दामोदर, भगवान दामोदर का नाम लिया है। और एक पुरुषोत्तम महीना आता है, वो महीना आता है कब, तीन साल के बाद यानी ढाई तीन साल का अंदर में आता है, वो पुरुषोत्तम महीना का अंदर है, वो महीना में भी बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि भगवान पुरुषोत्तम जगन्नाथ भगवान उनको स्पेशल महीना दान किया, उसको मौन महीना कहते हैं, मल महीना ओधी महीना। ये सब महीने का दिन निकाल करके जो दिन जो निकलता है वो एक महीना होती है तीन साल को बाद, तो तीन साल के बाद उसको भौतिक जगत में लोग कहते हैं मौल महीना, क्योंकि भक्त के लिए पुरुषोत्तम महीना है, क्योंकि ताकि भगवान सभी महीने में भगवान के सेवा से होते हैं, लेकिन मौल महीने में भगवान का कोई सेवा पूजा लोग नहीं करता है, इसलिए मौल महीना जाके भगवान के पास बहुत रोए, बोले हे प्रभु सभी महीने में आपका सेवा पूजा होते है कि तुम मेरे दिन में आपको सेवा पूजा लोग त्याग करते हैं, तो मेरे क्या गलती होगा, तो मेरे तो कोई काम का नहीं। तो भगवान ने बोला तुम चिंता मत करो, अभयदाता भगवान, भगवान ने अभयदाता है, भगवान ने कहा बोले ठीक है मैं मेरे नाम से तुम्हारे नामकरण कर रहा हूँ, मेरे नाम पे तुम ख्यात होगे पुरुषोत्तम नाम में, और ये महीने में जो व्यक्ति जो सेवा करेगा भजन साधन करेगा तो अधिक फल प्राप्ति होगा, तो उसको नाम दिया भगवान ने, तो स्पेशल महीना है। तो ये महीना में प्रदीप दान का तो महत्व आप लोग जानते हैं, प्रदीप दान क्यों करना चाहिए, क्योंकि पुराणों में एक चूहा ने हैं जय श्री राधा गिरिधरी भगवान की जगन्नाथ बलराम सुभद्र मैया की गौरीताय की प्रभुपाद महाराज की अनंत वैष्णव भगवान की। तो एक चूहा ने एक विष्णु मंदिर में चूहा रोज जाके वो दीप खाते जो रूजी है वो घी लगा होता था और वो खाने के लिए जाते थे, और ब्राह्मण उसको मंदिर को बंद करके जाता था, दीप जलते थे और वो चूहा जाके रोज खाता था। तो हमारे जैसे प्रदीप जल रहा है इसे, तो प्राय आलो प्राय जो अग्नि है प्राय बंद होने का होने का ही था, और उसी समय चूहा जाके उसको मुंह लगा दिया, और तो उसको जो रुई है रुई आगे बढ़ गया और उसको अग्नि प्रज्वलित हो गया और जाके उसको मुख जल गया, और वो दौड़ करके ये भगवान का विष्णु मंदिर का मंदिर चक्कर लगा के मैंने प्रदक्षिण करके भगवान के सामने प्राण तक किया। और देखिए ये तो अज्ञात स्वीकृति हो गया, उसको मालूम नहीं था विष्णु मंदिर में प्रदीप दान करने से क्या फल प्राप्ति होता है, किंतु उसको भक्ति मध्य स्वीकृति प्राप्ति हो गया। और वो जाके वो चूहा ने पर्वती मनुष्य शरीर प्राप्ति किया, और मनुष्य से प्राप्ति करके एक राजा को पुत्री रूप में जन्म हुआ, और बचपन से ही उसका चालू हो गया विष्णु मंदिर में आना और प्रदीप दान करना, प्रदक्षिण करना, भगवान को फूल फल देना, पूजा करना, ऐसा। और उसी प्रकार भक्तों का राजा को पुत्र का शादी हुआ, और दोनों भगवान का भजन करके विष्णु लोक गति प्राप्ति हो गया। तो प्रदीप दान का महत्व है, तो ये जैसे साल में तीन महीने महत्व है, एक महीना है कार्तिक महीना, मांग महीना और वैशाख महीना, तो तीन महीने के अंदर ही कार्तिक महीना का ज्यादा महत्व है। स्पेशल मास, स्पेशल दिन जो होता है जैसे एकादशी, स्पेशल व्रत होता है। कोई भी व्रत नहीं करे, एकादशी करेगा तो सारा सर्व सिद्धि प्राप्ति हो जाता है एकादशी करने से। तो जितने सारे व्रत है उसका श्रेष्ठ व्रत है एकादशी, तो श्रेष्ठ महीना है ये कार्तिक महीना। तो ये महीना में भगवान का ये पुतना बंध लीला चल रहे हैं, तो बहुत ही भागवतों में हम लोग अध्ययन कर करके माने रोज हैं, रोज पाठ करके देते। अभी कहाँ पर हैं, कार्तिक महीना में कृष्ण लीला में चर्चा चल रहे हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए ये अध्याय में पुतना बंध का लीला चल रहे हैं, तो जब पुतना राक्षसी भगवान को मारने के लिए आए, कंस ने उसको भेज दिया, और जो उस दिन पुतना वध हुआ उसी दिन नंद बाबा मथुरा में गया था दिन कंस का कर देने के लिए। क्योंकि साल में एक बार कर देना पड़ता है राजा को, वो छोटे राजा थे और कंस बड़ा राजा थे, तो कर देने के लिए गए। और जब वसुदेव महाराज आदि, जब वसुदेव महाराज मिला, वसुदेव महाराज ने कहा, बोले देखो बहुत सारे वार्तालाप हुआ उसके पश्चात वसुदेव महाराज ने कहा, बोले देखो महाराज, आप राजा को वसुरकत को दे दिया, तो आपको रहना अभी उचित नहीं है। क्योंकि वसुदेव महाराज से पता था अष्टम गर्भ में, दैविक अष्टम गर्भ में पुत्र होने वाला था, किंतु हो गया पुत्री, ये तो निश्चित कंस पता लगाएगा। अष्टम गर्भ में दैवी वाली हुआ, अष्टम गर्भ में पुत्र होने वाला था, पुत्री कैसे हो गया। और वो भी पुत्री आकाश मार्ग उड़ गया, और वो भी कह दिया तुम्हारे बात करने वाला किधर ना किधर जन्म ले लिया। तो ये तो शंका कंस के शंका थी, इसलिए वसुदेव महाराज चिंतित था, मतलब गोकुल में जाके कंस को उत्पन्न ना करे, और उसका शंका था मन में। तो इसलिए वसुदेव महाराज को कहा, बोले महाराज नंद महाराज आप जल्दी जाइए, मुझे लगता है गोकुल में कुछ उत्पाद होगा, मुझे शंका लग रहा है, आप विलम्ब मत कीजिए, आप जाइए। क्योंकि ब्रजों में आपका रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप राजा हो, राजा अगर नहीं रहेगा तो राज्यों में बहुत सारे उत्पाद होता है, अत्याचार होता है। तो आप ब्रजों से बाहर हैं, मथुरा में हैं, तो आप जल्दी जाइए, क्योंकि आप होने से ही सारा जो प्रजा लोग संतुष्टि रहेगा, खुश में रहेगा, देश शांति में रहेगा, तब जल्दी मिल जाइए। तो इधर कंस तो पुतना को भेज दिया, और पुतना भी बध हो गया। जब नंद महाराज आदि और ग्वाला लोग आए नंद महाराज के साथ, तो ये लोग सभी जब गोकुल में पहुंचा तब देखा ये घटना हो गया, तो देखा कि ब्रजवासी लोग देखा विशाल शरीर है, विशाल शरीर में एकदम गिरा हुआ था पुतना, पर्वत का देखे 12 माइल लंबी थे, पहले हाइट कितना हो गया अभी सोचो, पर्वत का मापी, पर्वत का शिखर जैसे एकदम, शिखर जैसे एकदम पड़ा था। तो पुतना का इस प्रकार जो कलेवर देखा शरीर, और उसको सारे गोवाला लोग ब्रजवासी लोग उसको टुकड़ा टुकड़ा करके काट करके, और विभिन्न जगह माने विभिन्न अलग अलग जगह में टुकड़े टुकड़े करके उसको जला दिया, क्योंकि इतने बड़े शरीर थे एक चीता में नहीं जला सकते थे उसको, इसलिए खंडो खंडो करके उसको, आज के श्लोक में यही है। तो टुकड़े टुकड़े करके उसका शरीर को जला दिया। तो इसी में तात्पर्य में प्रभुपाद जी लगते हैं अनुवाद में, श्लोक का अनुवाद में, तो इसको जलाए क्यों? तो प्रभुपाद महाराज लिखते हैं, तो बोले जैसे सर्प को मारने को बाद अगर उसको नहीं जलाए तो क्या होगा, सर्प को जो हवा लगता है ना मार करके फेंक दे तो हवा से जीवित हो जाता है। तो अगर जीवित हो गया, अगर मारा हुआ सर्प जीवित होके बच गया, अगर जीवित बन जीवित हो गया तो निश्चित उसको बदला लेगा। तो इसमें पुतना बिचला सर्प का ही जैसे थी, बिचला सर्प, क्योंकि उसके मन में इतना देश इतना ऋष्य भरा था, उसके मन में क्या था, भगवान को वध करने के लिए गया, ऐसे प्यार से स्तर पीने ने नहीं गया, प्यार से उसको एक दूसरा रूप में एक सुंदरी रूप धारण करके पैर से उठाया, लेकिन उसको अंदर का भावना क्या था, उसको वध करना है, वध करना भावना थी। तो उसको हृदय इतना विषों में भरा थे, इसलिए उसको विषिला सर्प ही जैसे कहा गया है। प्रभुपाद महाराज बोलते ये विषिला सर्प ही जैसे थे, इसलिए उसको काट करके टुकड़े टुकड़े करके जला दिया। सर्प जैसे अगर उसको नहीं जलाएगा तो वो बचेगा तो आओ उसको बदला लेगा, तो इसको भस्म करना है। तो गांव में हम लोग शाम कोई कोई गांव में सर्प को मार करके उसको जला देता है। बोले क्यों? बोले इसको नहीं जलाएगा ना तो बाद में जीवित रहेगा तो काटेगा, तो सांप को याद रहता है मुझे कौन मारा, और को घर में जाके बराबर उसको काटेगा। तो दुष्ट लोग जो होता है जैसे कोली, पता ना कोली परिषद महाराज जो भी उसको बात करने के लिए धनुष उठाया और स्वर योजना किया, तो कोली ने कह दे क्या, बोले ये तो तेजस्वी राजा है, शक्तिशाली राजा है, तो मुझे निश्चित रूप बात करेगा, तो मुझे अभी क्या करना चाहिए, इसको स्वर लेना है, अच्छा है। तो तुरंत कोली ने कहा परिषद महाराज के, हे राजन मैं आपको शरणापन्न हूं, शरणागतों को आपको बात करना उचित नहीं है, ये शास्त्र के विरुद्ध काम है। ऐसे में राजनीति में बताया, जो व्यक्ति युद्ध भूमि में जिसको हाथ में अस्त्र नहीं होता है उसको नहीं मारा जाता है, जो युद्ध त्याग करके चला जाता है भाग जाता है उसको भी बंद नहीं करना बात करना माना है, जो शरणापन्न होता है उसको बात करना माना है, हैं? इसे कई माने नियम है। तो देखिए महाराज मैं तो आपको शरणापन्न हूँ, आपको बात करना उचित नहीं है। तो परिषद महाराज ने देखा बोले ठीक है, तो जो धर्मराज थे तो बोले ठीक है, क्योंकि कोली क्यों शरणापन्न हुआ, कोली देखा अगर मैं ही इसको शरण में नहीं जाऊं तो मेरे जो काम है वो सफल होगा नहीं, और ये मेरे को वध करेगा, तो अतएव समय पर अभी झुकना ही बेटर है। तो इसलिए झुक गया। और दुष्ट व्यक्ति अगर झुक जाए, दुष्ट व्यक्ति अगर शरणापन्न किसी को हो गया तो समझना चाहिए आपका कुछ ना कुछ लोशन करेगा, ये पक्का बात है। अगर दुष्ट व्यक्ति अगर बल से आपको सब नहीं पाया, अगर वो आपको नम्र आपको पास सिलेंडर हो गया तो वो कुछ ना कुछ प्लानिंग बनाएगा और कुछ ना कुछ प्लानिंग बना के तुम्हारे हानि पहुंचाएगा। जैसे परीक्षित महाराज को ऐसे किया और बाद में देखा जाए वो बदला परीक्षित महाराज के ऊपर ही लिया, बोले सोने का मुकुट, बोले मुझे औरत स्थान दीजिए, चार स्थान तो दे दिया, बोले औरत स्थान दीजिए और सोने का मुकुट था, सोने का मुकुट में बजी। और परीक्षित महाराज का देखो, परीक्षित महाराज का एक धर्मराज राजा है, उसको मन में ऐसा भावना क्यों है? और जब परीक्षित महाराज को सौमित्र ऋषि के आश्रम में जाके उसको इस प्रकार व्यवहार किया, मारा हुआ सर को गला में डाल करके चला गया गुस्सा में, आज जब राजमहल में जाके जब मुकुट उतरा तब तुरा हमें उसको पता चल गया, तब उसको ध्यान आ गया, अरे मैं ये क्या किया। ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण जो होता है, ब्राह्मण लोग का हमारे पूर्वा पुरुष कितना ब्राह्मण लोग का सेवा किया और मैं ही ऐसे एक राजा है, ऐसे एक अधर्मी राजा बन गया, मैं ब्राह्मण का गला में बिना मतलब में उसको गले में सर को डाल के चला, हे भगवान मुझे कुछ सजा होना चाहिए, इसको कुछ प्रायश्चित होना चाहिए, इस प्रकार भावना किया। तो देखिए कोली के इसी प्रकार विभ्रांति कर देता है, कितना भी हम लोग प्रयास करते हैं भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए, किंतु कोली करने नहीं देता। कोली युग का नाम है कलह, कुछ ना कुछ आप जितना जो भक्ति में मारे गए उतना है उसको पीछे पड़ जाएगा, ये नियम है। जो जितना भक्ति करे उतना है। देखिए परशुराम जी कितने महान राजा थे, महान भक्तों राजा एकदम, जो गर्भों में ही भगवान को सिद्धि प्राप्त किया। और उस प्रकार और पांडव वंशधर, और इस प्रकार राजा को शुद्ध भक्तों को इस प्रकार भावना कैसे है, ब्राह्मण का गला में सर्प डालना, ये कोली नहीं करा है, कोली ने उसको इस प्रकार बुद्धि घुमा दिया। पानी नहीं दिया, पानी मांगा पानी नहीं दिया, उसके कारण गुस्सा गया। क्योंकि इसमें बताया है कि जो दुष्ट व्यक्ति होता है तो उसको स्वभाव ऐसी ही होता है, तब पुतना क्या दुष्ट होता है, इसके इस कारण इसको शरीर को भस्म करी देना अच्छा है। तो नंदो महाराज और सारे ग्वाला लोग आके उसको शरीर को भस्म कर दिए थे जल करके, कि शरीर जलने से पंचो तत्व जो है तो पांच जगह में अपन स्थान में चला जाता है और उसको अस्तित्व तो कुछ बचता नहीं, अग्नि अग्नि में चला जाता है, वायु वायु में चला जाता है, आकाश आकाश में चला जाता है, और मिट्टी मिट्टी में मिट जाता है, और पानी पानी में चला जाता है। तो पांच जो तत्व है वो कुछ बचता नहीं और उसको अस्तित्व तो नहीं रहता है। तो फिर भी देखिए भगवान का स्वभाव है, कितने भी पापी हो लेकिन भगवान का थोड़े मन तो सेवा करने अगर जो व्यक्ति किया वो भगवान उसको सदगति देता है, दुर्गति नहीं देता है। कैसे भी हो पुतना का जो भावना क्या था, भगवान को बात करने के लिए, लेकिन भगवान उसको भावना नहीं देखी, भगवान उसको सेवा देता, वो सेवा किया है, भले उसको बीज दान किया, भगवान को बीज दिया, किंतु भगवान देखा मुझे सेवा किया। तो भगवान उसको सेवा का कारण क्या किया, भगवान उसको अपना धाम में ले गए और मातृ गति धात्री गति दे दिया। आजो पुतना भगवान को गोलोक धाम में सबसे सर्वश्रेष्ठ उच्च धाम में उसको सेवा दिया। तो कोई व्यक्ति अगर भक्ति पूर्वक अगर भगवान को अगर थोड़े भी सेवा करे तो भगवान उसको क्या नहीं देगा, प्रेम पूर्व भक्ति को अगर उसको सेवा करे तो भगवान उनको धाम गति नहीं देगी। गजराज देखी एक फूल दिया भगवान को, हाथी शरीर में एक फूल दिया, किंतु जब राजा थे इंद्रदुर्म राजा थे कितना सेवा किया, कितना फूल अर्पण किया भगवान के चरण में। तो देखिए उसको स्मृति अंतिम समय नारद स्मृति आ गया, नारद स्मृति भगवान को सेवा किया वो स्मृति आ गया। ये कौन दिया, भगवान ने प्रेरणा दिया, और ऋषि ने उसको जो अभिशाप भी दिया, ऋषि ने कहा अगस्त ऋषि ने उसको भी जब अभिशाप देने के बाद रो रहा था तो उसको बोलने वाले ठीक है तुमको भगवान प्राप्ति होगा और तुमको तुमको स्मरण भी आएगा, उस कारण से उसको स्मरण आ गया और भगवान का स्मृति आ गया, भगवान उसको उद्धार किया और भगवान उसको अपना धाम में लेके गया। मतलब मतलब हाथी के शरीर में भी एक फूल अर्पण किया। तो भगवद गीता तो भगवान तो बोलते हैं चार प्रकार सीखे द्वारा मेरे सेवा होता है कि नहीं, भगवान खुद बताए कुछ भी नहीं है तो कुछ तो प्रभुपाद मारे बोलते कुछ तो कुछ नहीं है तो तुम तो कुछ पानी भी तो दे सकते भगवान को, वो तो भगवान ने पानी भी भगवान ने बनाया तो पानी भी अर्पण कर सकते, ये भी नहीं कर सकते तो क्या करोगे, है कि नहीं। भगवान तो पत्ता का द्वारा फूल का द्वारा फल का द्वारा जल का द्वारा मेरे सेवा होता है। तो प्रभुपाद महाराज बोलते हैं तो पृथ्वी में कोई भी जगह में ये चार चीज नहीं है, ऐसे बात नहीं है। पृथ्वी कोई कन्नर कोना में जाओ, कन्नर में जाओ आपको चार चीज मिल जाएगा। तो चार चीज को द्वारा क्या हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते। तो भगवान बोलते कुछ नहीं है तो मेरे को पता तो फूल ये तो फूल तो अर्पण करो, ये भी नहीं करेगा तो भगवान क्या करेगा है? भगवान बोलते है और कुछ भी नहीं है तो पाता दो फूल दो, ये भी नहीं करो तो करोगे क्या, और कितना मौका देगा जीव को। तो भगवान को एक फूल अर्पण करने से ही भगवान महाविपश से उसको उद्धार किया, है कि नहीं। ब्रजों में देखो फल नहीं पाता, फल अर्पण किया और उसको भगवान उसको सारा दुख मिला दिया। और अंतिम से तो भगवान को धाम जाए गए, जो भगवान के दर्शन करते हैं तो भगवान को धाम तो जाने वाला है। तो कुरुक्षेत्र में जितने जो मारा गया भगवान को दर्शन करते हैं तो सभी मुक्त हुए हैं, सबको उद्धार किया। असुर लोग जो भगवान को हाथ में मारा जाए, भगवान का हाथ में मारा जाता है भगवान उसको वध करते हैं, इसको भी मुक्ति होता है, है? तो भगवान किसी न किसी प्रकार से जीव को कृपा करने के लिए भगवान करुणा सिंधु है, भक्तवत्सल है, दीनबंधु है, सारे जीव उसका है। सारा जीव जो होता है भगवान का पुत्र होता है, भगवान का अंश होता है। तो भगवान किसी न किसी कारण से जीव को उद्धार करने के लिए सब लीलाएं करते हैं। और देखिए रामायण में एक थोड़ा प्रणाम किया विभीषण जी, प्रणाम किया तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं मुझे कुछ तो नहीं करो तो प्रणाम तो करो, तुम्हारे मन तुम मुझ में समर्पण करो, है मन अपना बहु मत भक्तो तो मुझे तो प्रणाम तो करो। भगवान बोलते हैं मुझे कुछ दान करो, पहले ही मुझे दान करके तो देखो मैं तुमको क्या करता हूं, कम से कम तो प्रणाम तो करो, कुछ नहीं करे तो प्रणाम तो कर सकते हैं, इसमें क्या तकलीफ क्या है। एक प्रणाम करने से भगवान उसको सारा लंका राज्य दान कर दिया। लंका को अर्पण कर दिया विभीषण को, और खाली इतने कहा, ज्यादा कुछ कहा नहीं, भगवान के एक प्रणाम किया, रामं शरणं गच्छन्ति, हे प्रभु मैं आपको शरण में आ गया हूं। जब गोपी लोग जोगुना में छोटे छोटे बालिका था गोपिया लोग, तो जोगुना में कात्यायनी पूजा करते हुए जो जोगुना में वस्त्र नवस्त्र नहाते थे, तो भगवान ने जब उसको सिद्धि प्राप्ति हुआ, तपस्या सिद्धि हो गया, तो भगवान ने अंतिम समय दर्शन दिया, तो गोपी लोग को बोला अपना अपना वस्त्र लेके जाओ, तो फिर ले लेके जा रहा है, तो भगवान ने कहा तुम लोग लज्जा क्यों कर रहे हैं, अगर तुम लोग मुझे अर्पण किया, मैंने तुम लोग का कुछ है नहीं, शरीर मुझे अर्पण किया था, तुम लोग लज्जा क्यों कर रहे हैं, तो तुम लोग अपना अपना कपड़ा लेके जाओ, तो फिर भी नहीं है, तो फिर भगवान अपना अपना कपड़ा दिया। कपड़ा देने के बाद भगवान ने कहा, बोले देखो तुम लोग ये जोगुना में जो वस्त्रहीन अवस्था स्नान किया, तब तुम लोग अपराध हो गया, क्योंकि जोगुना पवित्र नदी है और इसमें स्नान करना वस्त्रहीन अवस्था उचित नहीं है, तब तुम लोग अपराध लग गया। कोई भी पानी में, कोई भी तालाब में, कोई भी गंगा में हो, नदी में हो, वस्त्रहीन अवस्था स्नान नहीं करना चाहिए। और भगवान ने कहा गोपी लोग को, आप लोग मुझे प्रणाम करो, हाथ जोड़ करके करो, करो जोर करके नमस्कार करो, और मुझे नमस्कार करने से तुम्हारे जो तपस्या करते हुए जो तुम्हारे जो तुम लोग को जो पाप हुआ, तो पाप नष्ट हो जाएगा। तो सारे गोपिया लोग हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम किया, भगवान वो लोग को सारा अपराध क्षमा कर दिया और वो लोग को मौका दिया, बोले ठीक है अभी जो रास पूर्णिमा आ रहा है, ये रास पूर्णिमा आएगा अभी, ये महाराज में तुम लोग को सभी को मौका दिया जाएगा, ये भगवान ने वचन दिया, बोले तुम लोग को लेकर रास किया जाएगा। और वो सब गोपिया लोग कौन थे, ये दंडकार ऋषि लोग थे, ये साधारण स्त्री नहीं थे, ये दंडकार ऋषि लोग जो भगवान रामचंद्र को देखा था और उनको इच्छा हुआ बोले भगवान को प्राप्ति करने के लिए, तो भगवान ने मन ही मन उसको आशीर्वाद दिया और वही सारे ऋषि लोग जाके गोपी बन गए ब्रज में। और कात्यायनी माने जो जोगमाया जोग माता था, जोगमाया कात्यायनी रूप में वृंदावन में, तो सारे गोपिया लोग कात्यायनी माता यहाँ जोगमाया को पौर्णमासी को पूछा, पौर्णमासी रूप में थे, तो पौर्णमासी को पूछा बोले देखो हम लोग नंदनंदन कृष्ण को कैसे प्राप्ति करें, तो कात्यायनी पौर्णमासी ने आदेश दिया बोले देखो तुम लोग को एक व्रत करना होगा, वो व्रत क्या है, कात्यायनी पूजा करना पड़ेगा, और कात्यायनी पूजा अगर तुम लोग करोगे सुबह उठ करके सूर्योदय पूर्व काल में जाके जोगुना में स्नान करना, और रेती का मूर्ति बना के, कात्यायनी मूर्ति बना के उसे पूजा करना, चंडुल माने चावल का और केला चावल ये सब द्वारा, धूप अगरबत्ती के द्वारा, धूप के द्वारा, और एक मंत्र बोल के प्रणाम करना, कात्यायनी महामाये महामाये जोगेश्वरी नंद सूतन पति देही गुरुवे नमः, यही बोल के प्रणाम करना। तो ये कात्यायनी पूजा करके तपस्या किया, गोपी लोग भी तपस्या किया, बिना तपस्या मतलब है मनुष्य शरीर में बिना तपस्या में भगवान प्राप्ति नहीं हो सकती, सीधा बात, तपस्या तो करना ही पड़ेगा। ब्रह्मा जी स्वयं तपस्या किया, कौन तपस्या किया बताइए, प्रभुपाद महाराज कितने तपस्या किया, बिना तपस्या के संभव हुआ, इतना बड़ा प्रचार, इतना बड़ा इस्कन बनाना कि प्रचार करना, तपस्या किया 20 साल तो तपस्या किया, वृंदावन में प्रभुपाद महाराज भी तपस्या किया, भक्ति सिद्धांत ठाकुर भी तपस्या किया, भक्ति सिद्धांत ठाकुर मायापुर में जो भक्ति सिद्धांत ठाकुर कुटिया है ना, ब्रजपत्तन उसमें चातुर्मास काल में शतकोटि नाम जप करते थे यज्ञ, और वो भी हाथ से उड़े के नहीं खाता था, गोग्रास माने गाय जैसे खाते हैं ना उस प्रकार, उनको पता में देते दो और गोग्रास में खाते हाथ से नहीं, उसमें जितना भोजन होगा हो गया। आज चैतन्य महाप्रभु सब पार्षद ने आके उनको दर्शन दिया, पंचतत्व सारे पार्षद लोग को साथ, और बोला क्या तुमको जगत में ये बैठ बैठ के मेरा भजन करो साधन करो इसलिए नहीं भेजा, मेरे नाम प्रचार करने के लिए तो प्रचार करो, तब आदेश हुआ। और वो मूर्ति जो है ना उद्रदीप है, जो चैतन्य महाप्रभु का मूर्ति रख करके तपस्या किया भक्ति ठाकुर, वो मूर्ति अभी भी है, आप लोग जानते हैं ना उद्रदीप में और सागर महाराज मंदिर बनाया गौरियमान उसमें है वो मूर्ति उद्रदीप में है। तो मतलब है तपस्या तो करना पड़ेगा, बिना तपस्या में नहीं होगा। तो तपस्या मनुष्य शरीर जैसे हम लोग प्रभुपाद महाराज शास्त्र में आदेश दिया, प्रभुपाद महाराज शास्त्र आदेश में सबका आदेश दिया, सभी गुरु गुरुवर्ग गुरु परंपरा सभी आदेश दिया, सुबह उठना तपस्या करना जप करना चिंतन करना कीर्तन करना, ये भी एक तपस्या है। कॉलेजन में ये भी बड़ी बड़ी तपस्या है, सुबह उठना कितना मुश्किल काम है कि नहीं। फिर हम लोग संगबद्ध में है फिर उठ जाता है, एकला रह गया तो मुश्किल है, एकला रह गया तो नहीं हो सकते, संगति में ही हो सकते हैं सब दलबद्ध अवस्था में। और तो पुतना देखिए थोड़े सेवा किया भगवान का, और भगवान उसको इतना धात्री गति सेवा दिया। तो भगवान को कुछ भी थोड़ा भी करेगा ना भगवान बहुत देता है, एक तो भाव करेगा ना तन भगवान को भाव देखते हैं, और भगवान और कुछ नहीं देखता, दोष को भी देखते ही नहीं। जैसे भक्त और भगवान, जैसे भगवान को भी दोष नहीं देखता है और भक्त भी को भी दोष नहीं देखता है। प्रभुपाद महाराज के ऐसे गुण थे, को भी भक्तों का दोष नहीं देखता था, सबको लगाते थे सेवा में, कितना भी अगर दोष करें। तो इसे हमारे गोपाल कृष्ण महाराज का ऐसे गुण है देखा जाए। हम लोग तो आज इतना सालों से महाराज को देख रहे दर्शन कर रहे, ये को भी किसी को माने कितने बने आप अपराध कर कुछ भी करो के तो फिर भी सेवा में लगाता है। तो भक्तों का जो गुण है भगवान का गुण भक्तों में आ जाता है, और भक्तों का इसी स्वभाव होता है। तो भगवान देखिए तो हम लोग होते तब क्या बोलते थे, बोले ये पुतु ने तो पापनी है तो मानने के रहा है, इसको काय के लिए भगवान ने मुक्ति गति दिया धात्री गति दिया, नहीं भगवान उसको मानने के नहीं देगा भाव, भगवान देखा को भावना है उसको भावना यही देखा। और भगवान का शरण में आने ही से एक प्रकार अर्पित हो गया था, पुतना भी अर्पण किया समझो, है अर्पण ही किया ना इसको, कृष्ण को जाने मन में अर्पण है ना। कृष्ण को कैसी मेरा कैसी भाव में आता है तो भगवान वो देखते हैं, बोले मुझे अर्पण कर रहा है। एक बार शिव के भक्त थे, वो भक्त नहीं था वो चोर था, वो शिव मंदिर में घंटा घंटा चोरी करने के लिए गया, बड़ा घंटा थे एकदम, तो शिवलिंग बहुत बड़ा था, तो सभी लोग पूजा करते शिव शिवलिंगों में फूल देते पता देते हैं, तब भोलानाथ तो वो सदा आशुतोष से खुश हो जाता है एक पता देने से। तो चोर क्या किया, घंटा को हाथ में नहीं पा रहा है ऊपर, तो शिवलिंग में उठ करके वो घंटा को उतरने का प्रयास किया, और शिव जी ने तुरंत प्रकट हो गया, बोले वाह 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 तुम तो मेरे पूरे अर्पण कर दिया, उठा के तो उसके ऊपर। तो शिव जी ने क्या देखा, तुम तो पूरा ही मेरे को अर्पण कर दिया, लोग तो पाता फूल देते हैं पाता देते हैं जल देते हैं, तुम तो पूरे अर्पण कर दिया, माने शिव के ऊपर उठ गया, उठ के घंटा को उतर रहा था। तो शिव जी प्रकट हो गया, बोले बेटा बोल रहा हूँ ऐसे। तो भक्तों, अरे भगवान को भी दोष नहीं देखता। और इस प्रकार अगर भगवान को थोड़े भी सेवा हम लोग करें, कर रहे हैं, करें, तो निश्चित हम लोग को भगवान उनको धाम लेके जाएगा। ये विश्वास है, विश्वास करना चाहिए, विश्वास भी है। और हमारे आचार्य लोग प्रभुपाद जी सारे गुरु परंपरा यही विश्वास दे रहे हैं, बोले तुम लोग मन में शंका मत रखो, जैसे गुरु वैष्णव का आदेश है इस प्रकार पालन करते रहो, जब करते रहो, निचिना नीच मान हरि से लागे रहो। हरे भाई एक दिन ना एक दिन बनाए जाए, हरि में लागे रहेगा तो एक दिन ना एक दिन निश्चित उद्धार हो जाएगा, ये पक्का बात है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधा कृष्ण भगवान की, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया की, प्रभुपाद महाराज की, गौर पिता की, गौर भक्त बिंदुगान की, अनंत गुरु वैष्णव बिंदुगान की, श्रीमद भागवत अमल पुराण की, श्रीमद भागवत गुरुद्वराज की, गुरुद्वराज भागवत की, राधा दामोदर देव भगवान की, गोकुल धाम की, नंद बाबा की, नंद महाराज की, गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्ण।